नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज हरिद्वार में पतंजलि इमरजेंसी एवं क्रिटिकल केयर अस्पताल का उद्घाटन किया। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास के सचिव विनोद कुमार सुमन ने राज्य के विभिन्न विभागों के सेंडाई फ्रेमवर्क के तहत वर्ष 2015 से 2030 तक के लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राज्य में समान नागरिक संहिता के पंजीकरण अब अंग्रेजी सहित भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में उपलब्ध हैं और मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर अधिकारियों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूर्व तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मुदिता, और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज हरिद्वार में गायत्री परिवार द्वारा आयोजित शताब्दी वर्ष समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हरिद्वार एक पावन कुंभ क्षेत्र है, जिसे सप्त ऋषियों की तपस्या की भूमि के रूप में जाना जाता है। इस दिव्य धरा पर संतों ने अपने आत्मबल से स्वयं के साथ साथ करोड़ों लोगों को अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर किया है। श्री शाह ने कहा कि इसी भूमि पर पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य और वंदनीय माताजी ने गायत्री ऊर्जा को जागृत करने का महान कार्य किया। उन्होंने अखंड ज्योति सम्मेलन को आस्था, अध्यात्म और संस्कृति का अद्भुत संगम बताते हुए कहा कि यहां आकर उन्हें अखंड ऊर्जा और चेतना की अनुभूति हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने व्यक्ति निर्माण के माध्यम से आस्था, अध्यात्म और संस्कृति के पुनर्जागरण का मार्ग प्रशस्त किया। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने हरिद्वार में पतंजलि इमरजेंसी एवं क्रिटिकल केयर अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास के सचिव विनोद कुमार सुमन ने राज्य के विभिन्न विभागों के सेंडाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। देहरादून स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में आयोजित बैठक में उन्होंने सेंडाई फ्रेमवर्क में वर्ष 2015 से 2030 तक के लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सभी विभागों को एक सप्ताह के भीतर अपने विभाग की कार्य योजना प्रस्तुत करने को कहा। सेंडाई फ्रेमवर्क आपदाओं से होने वाली जनहानि, प्रभावित लोगों की संख्या, आर्थिक क्षति और बुनियादी सेवाओं तथा महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं को होने वाले नुकसान को न्यूनतम करने की दिशा में एक वैश्विक रूपरेखा प्रदान करता है। श्री सुमन ने कहा कि सेंडाई फ्रेमवर्क की पहली प्राथमिकता आपदा जोखिम को समझना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपदा से संबंधित आंकड़ों का व्यवस्थित संग्रह, विश्लेषण और उपयोग अत्यंत आवश्यक है। दूसरी प्राथमिकता आपदा जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करना है। इसके लिए तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करना होगा। जबकि तीसरी प्राथमिकता आपदा जोखिम न्यूनीकरण में निवेश के संबंध में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जोखिम कम करने के लिए योजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा चौथी प्राथमिकता आपदा के प्रति तैयारी तथा प्रभावी प्रतिक्रिया और पुनर्निर्माण पर जोर देना है। प्रदेश में सहकारिता व्यवस्था के डिजिटलीकरण के तहत अब तक 405 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को ई पैक्स में बदला जा चुका है। शेष समितियों का डिजिटलीकरण जारी है। राज्य के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने यह जानकारी दी है। सहकारिता मंत्री की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ई पैक्स के माध्यम से गांवों में डिजिटल सेवाएं उपलब्ध होंगी और समितियां मल्टीपर्पज सेंटर के रूप में कार्य करेंगी। डिजिटलीकरण से लेन देन ऑनलाइन होगा, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी और किसानों, काश्तकारों, कारीगरों, युवाओं और महिलाओं को डिजिटल सेवाओं का लाभ मिलेगा। डॉ. रावत ने बताया कि शेष समितियों के कंप्यूटरीकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं और ई पैक्स का ई ऑडिट भी किया जा रहा है। समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी के पंजीकरण को अब बहुभाषी बनाया गया है। यूसीसी से संबंधित सेवाएं अंग्रेजी सहित भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में उपलब्ध हैं। आवेदक अपनी पसंदीदा भाषा में नियम, प्रक्रियाएं और आवश्यक दस्तावेज समझकर आवेदन कर सकते हैं। यूसीसी पोर्टल पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित सहायता की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे नागरिक स्वयं ऑनलाइन और फेसलेस पंजीकरण कर सकते हैं। इस प्रणाली के तहत विवाह पंजीकरण, विवाह विच्छेद, वसीयत, लिव इन पंजीकरण और लिव इन संबंध समाप्त करने जैसी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गौरतलब है कि पिछले एक साल में इस प्रक्रिया के माध्यम से 5,00,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए और कोई निजता उल्लंघन या शिकायत दर्ज नहीं हुई। आवेदन पर औसतन 5 दिनों में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, जिससे नागरिकों का समय भी बच रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सभी संबंधित जिलों के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों और विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में संभावित बारिश, बर्फबारी, पाला और शीतलहर से उत्पन्न परिस्थितियों को लेकर जनपदों की तैयारियों की समीक्षा की गई और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूर्व तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। एक रिपोर्ट।
सचिव आपदा प्रबंधन ने सभी जिलों को मौसम खराब रहने की संभावना के दौरान सतर्क रहने और सभी कार्यदायी एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखने को कहा। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए संवेदनशील और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में सुरक्षित प्रसव की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित करने तथा आवश्यकता पड़ने पर समय रहते नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। एम्बुलेंस सेवाओं को पूरी तरह सक्रिय रखने पर भी जोर दिया गया। बर्फबारी के कारण मार्ग अवरुद्ध होने की आशंका को देखते हुए संवेदनशील और उच्च हिमालयी मार्गों पर JCB, स्नो कटर और अन्य आवश्यक मशीनरी की अग्रिम तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया है। आपात स्थिति में मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र खोलने के निर्देश भी दिए गए। फिसलन और दुर्घटनाओं की संभावना को कम करने के लिए पाला प्रभावित क्षेत्रों में नमक और चूने के छिड़काव तथा संवेदनशील सड़कों और पुलों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से जयवीर सिंह।
इस बीच ठंड से बचाव के लिए सार्वजनिक स्थलों और जरूरतमंद क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था करने तथा रैन बसेरों में बिजली, पेयजल, बिस्तर और हीटर जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं और किसी भी आपात स्थिति की सूचना तत्काल राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र को देने और जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सक्रिय रखने को कहा गया है। उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से ट्रांसफर हुए शस्त्र लाइसेंसों की जांच के लिए एसटीएफ ने सख्त रुख अपनाया है। देहरादून में फर्जी शस्त्र लाइसेंस के मामले के बाद दूसरे जिलों में भी बाहरी राज्यों से आए लाइसेंसों की पड़ताल शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि वर्ष 2015 के बाद ट्रांसफर हुए सभी लाइसेंसों की सूची तलब की गई है और प्रत्येक लाइसेंस की गहन जांच की जाएगी। अवैध या फर्जी पाए जाने पर संबंधित शस्त्रधारकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि देहरादून में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में कुल 827 शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज हरिद्वार में पतंजलि इमरजेंसी एवं क्रिटिकल केयर अस्पताल का उद्घाटन किया। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास के सचिव विनोद कुमार सुमन ने राज्य के विभिन्न विभागों के सेंडाई फ्रेमवर्क के तहत वर्ष 2015 से 2030 तक के लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राज्य में समान नागरिक संहिता के पंजीकरण अब अंग्रेजी सहित 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में उपलब्ध हैं और मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर अधिकारियों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूर्व तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।